नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दो बार स्थगित किया गया और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार स्थगित होने के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीच में आ गए और एसआईआर के खिलाफ नारे लगाने लगे। बार बार अपील के बावजूद विपक्ष ने विरोध जारी रखा, इसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में जब पहली बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोहराया कि सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर नियम 267 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया। बाद में राज्यसभा ने मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर लौटा दिया। ये अक्टूबर में जारी मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा ने विशेष उल्लेख कर विचार किया, जहां सदस्यों ने तत्काल महत्व के मुद्दे उठाए। कामकाज संपन्न होने के बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने के बाद से मतदाताओं के करीब 50 करोड़ 85 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण के करीब 51 करोड़ मतदाताओं का 99.78% है। आयोग ने कहा कि अब तक करीब 40 करोड़ फॉर्म डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। एसआईआर का दूसरा चरण इस महीने की 4 तारीख को 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने जिला चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ के पास उपलब्ध सभी गणना फॉर्म आज डिजिटल कर दिए जाएंगे। कल से एकत्र किए गए फॉर्मों को दैनिक आधार पर डिजिटल करना होगा। जो फॉर्म बीएलओ को नहीं सौंपे जाएंगे उन्हें असंग्रहणीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि संचार साथी के बारे में जासूसी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गुमराह करने वाले हैं। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि यह ऐप यूजर के मैसेज नहीं पढ़ सकता, कॉल नहीं सुन सकता और पर्सनल डाटा का उल्लंघन नहीं करता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह ऐप यूजर्स को धोखाधड़ी, साइबर अपराध और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से बचाने के लिए है।
संचार साथी जो ऐप है ये आपके मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। संचार साथी का काम फ्रॉड रोकना, सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन इनको ट्रैक करने का है और उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है।
काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण के बीच संबंधों को मजबूत करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 68,393.67 करोड़ रूपये जारी किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दिल्ली में एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 और लड़ाकू विमान SU-57 राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। श्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों देशों का व्यापार बढ़कर $63 अरब हो गया है और 2030 तक ये $100 अरब तक पहुंच जाएगा। भारत आज तमिलनाडु के मदुरे में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के अपने अंतिम पूल मैच में स्विट्जरलैंड के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात्रि 8:15 पर शुरू होगा। भारत अपने दोनों पूल मैच जीतकर 6 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।